अध्याय 66। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाल ही में रात्रि के दर्शन में मेरे मन में पवित्र आत्मा ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि प्रभु इतना शीघ्र आ रहा है जैसा हम विश्वास करते हैं, तो हमको लोगों के सामने सत्य को पहुंचाने में पिछले सालों की बनिस्बत अधिक सक्रिय होना चाहिए। इस संबंध में मेरा ध्यान सन 1843 और 1844 में मसीह के आगमन पर विश्वास रखने वालों को सक्रियता की ओर फेरा गया। उस समय घर घर जाकर मुलाकातें की जाती थीं और लोगों को परमेश्वर के वचन में कही गई बातों के विषय में चेतावनी देने के लिए अधिक परिश्रम किए जाते थे। जो पहले दूत के संदेश देने वाले विश्वस्त से देते थे, उनसे हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। हम वेग से इस पृथ्वी के इतिहास के अंत की ओर पहुंच रहे हैं, और जब हम यह महसूस करते हैं कि यीशु सचमुच में बहुत शीघ्र आ रहा है, तो हम परिश्रम करने के लिए ऐसे जाग जाएंगे जैसे पहले कभी नहीं जागे थे। हमें आज्ञा हुई है कि लोगों को खतरे की घंटी बजाकर चेतावनी दें और अपने ही जीवन से हम सत्य और धार्मिकता की शक्ति की प्रकट करें। संसार को शीघ्र ही व्यवस्था उल्लंघन के लिए व्यवस्थादाता के सन्मुख खड़ा होना होगा। केवल वे ही क्षमा तथा शांति की आशा कर सकते हैं जो आज्ञा उल्लंघन से आज्ञा पालन की ओर फिरेंगे। आह, कितने उपकार का कार्य संपन्न होता यदि सारे लोग जिनके पास सत्य मार्ग और जीवन वचन है, उनको ज्ञान देने का परिश्रम करते जिनके पास है नहीं। शोमरोनी स्त्री को बुलाहट पर जब शोमरोनी लोग मसीह के पास आए, तो मसीह ने अपने शिष्यों को उनके बारे में बतलाया कि वे एक अनाज के पक्के हुए खेत के सदृश हैं जो कटनी के लिए तैयार। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यूहन्ना 4:365। मसीह शोमरोनियों के संग 2 दिन तक रहा, क्योंकि वे सत्य वचन सुनने के भूखे थे, और वे दिन कितने व्यस्त थे। इन दिनों के परिश्रम के फलस्वरूप उसके वचन के कारण और बहुतेरों ने विश्वास किया, उनकी गवाही यह थी, हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। पद 41:42, तुम्हारा उद्धार निकट है। जब मैं भयंकर आपदाओं का वर्णन सुनती हूं जो हर हफ्ते हो रहे हैं, तो अपने से ये प्रश्न पूछती हूं, इन बातों का क्या अर्थ है? सबसे भयंकर विपत्तियां वेग से एक दूसरे के पश्चात आ रही हैं। बार बार हम भूचाल, आंधी, अग्नि व बाढ़ द्वारा क्षति तथा प्राणों व संपत्ति की हानि के बारे में सुनते हैं। प्रत्यक्ष में ये आपदाएं अव्यवस्थित, अनियंत्रित शक्तियों का उमंगी विस्फोट ही है, परंतु उनमें परमेश्वर का मनोरथ पढ़ा जा सकता है। वे एक साधन हैं जिनके द्वारा वह पुरुष स्त्रियों को खतरे की भावना की ओर से जगाता है। मसीह का आगमन हमारे प्रथम विश्वास लाने के समय से और भी निकट है। महान वाद विवाद अपने अंत के निकट पहुंच रहा है। परमेश्वर का कोप पृथ्वी पर आ गया है। वह गंभीर चेतावनी के साथ कह रहा है, इस तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44। परंतु हमारी मंडलियों में बहुत हैं जो इस समय के सत्य का वास्तविक मतलब नहीं जानते। मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि समय के चिन्हों को पूरा होते देख उनकी अवहेलना न कीजिए, जो यह स्पष्टता से कह रहे हैं कि अंत निकट है। आह, कितने हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा की खोज नहीं की। वे फूट फूट कर रोएंगे। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी बीत गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ।
हम इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्यों में रहते हैं। भविष्यवाणी शीघ्र पूरी हो रही है। क्षमा काल की घड़ियां शीघ्र ही गुजर रही हैं। हमारे पास समय या क्षण नष्ट करने को नहीं है। हमें अपनी चौकी पर सोते नहीं पाया जाना चाहिए। कोई अपने कर्मों से यह न कहें, मेरा स्वामी आने में विलंब करता है। मसीह के शीघ्र गमन का संदेश चेतावनी के उत्साहपूर्ण शब्दों में प्रचार किया जाए। आइए हम पुरुष और स्त्रियों को पश्चाताप की ओर आने वाले कोप से भागने को फुसलावें। हम उनको उकसावें कि शीघ्र तैयारी करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे सन्मुख क्या है। कर्मचारियों और अवैतनिक सदस्य पके हुए खेतों में जाकर लापरवाहों और उदासीनों से कहें कि परमेश्वर की तलाश कीजिए, जबकि वो मिल सकता है। कर्मचारी जहां कहीं वे बाइबल के विसरे हुए सत्य का प्रचार करेंगे, वहीं कटनी फसल तैयार पाएंगे। उनको वे लोग मिलेंगे जो सत्य को ग्रहण करेंगे और मसीह के लिए अपने जीवन की आत्माओं को जीतने में व्यतीत करेंगे। प्रभु शीघ्र ही आने वाला है और हमें उसको शांति के साथ मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए हम पक्के इरादे से जो कुछ हमारे बस की है उससे अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रकाश पहुंचावें। हमें शोकित नहीं किंतु प्रसन्न होना चाहिए और प्रभु यीशु को सदा अपने सन्मुख रखना चाहिए। वो शीघ्र आ रहा है और हमको उसके आगमन के लिए तैयार और बाट जोहते रहना चाहिए। आह, उसको देखना और उसके मोल लिए हुए लोगों को स्वागत किया जाना कितना महिमामय होगा। चिरकाल से हम इंतजार कर रहे हैं, पर हमारी आशा धुंधली नहीं होनी चाहिए। यदि हम सम्राट को उसके सौंदर्य में देख सकें तो हम सर्वदा धन्य होंगे। मैं ऐसा महसूस करती हूं कि ऊंचे स्वर से चिल्ला उठूं, हम घर जा रहे हैं। हम उस समय के निकट आ रहे हैं जब मसीह सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ अपने छुड़ाए हुओं को अपने अनंत घर में ले जाने को आएगा। महान अंतिम समय के काम में हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसका हमें मालूम नहीं कि कैसा प्रबंध करना है, परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्वर्ग की तीन बड़ी शक्तियां कार्यरत हैं और ईश्वरीय हाथ पतवार के ऊपर है, और कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। वो संसार से एक संप्रदाय को जमा करेगा जो धार्मिकता से उसकी सेवा करेंगे। विजय के लिए प्रतिज्ञा। मैं सरगर्मी के साथ प्रार्थना करती हूं कि जो काम इस समय में कर रहे हैं उसका हृदय मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव हो जाए। कठिनाइयों की वृद्धि तो होगी, परंतु हम परमेश्वर में विश्वास रखने वालों के नाते एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। आइए हम स्तर को नीचा न होने दें, परंतु उसको ऊंचा उठाए और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने हारे को, अर्थात उसको, यीशु को ताकें। जब रात के समय मैं सोने से असमर्थ होता हूं तो अपना हृदय प्रार्थना में परमेश्वर की ओर उठाती हैं, तो वो मुझे बल और आश्वासन देता है कि वो सेवा करने वाले सेवकों के साथ स्वदेश में और सुदूर विदेशों में भी है। जब मैं महसूस करती हूं कि इसराइल का परमेश्वर अब भी अपने लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है और उनके साथ अंत तक रहेगा, तो मुझे प्रोत्साहन और आशीर्वाद प्राप्त होता है। परमेश्वर यह देखने की इच्छा करता है कि तीसरे दूत का संदेश उन्नतिपूर्ण कार्यक्षमता के साथ आगे पहुंचाया जाए, जैसे उसने सारे युगों में अपने लोगों की विजय होने में सहायता की है। इसी तरह वो इस युग में भी अपनी मंडली के हितार्थ अपने मनोरथों को विजयपूर्ण सफलता देना चाहता है। वो अपने विश्वासी धर्मोजनों को आज्ञा देता है कि वे संयुक्त होकर बल में अधिक सामर्थ्यवान होकर और विश्वास में सत्य और उसके कार्य की धार्मिकता में अधिक आश्वासन तथा भरोसा रखकर आगे बढ़ें। हमें परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के प्रति चट्टान की तरह दृढ़ रहना चाहिए, यह स्मरण रखते हुए कि परमेश्वर हमें हर नए अनुभव का सामना करने में शक्ति देने को हमारे साथ है। आइए हम अपने जीवन में धार्मिकता की सिद्धांत कायम रखें, जिससे हम परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य से सामर्थ्य तक आगे बढ़ें। हमें को उस विश्वास को अति ही पवित्र समझकर संभालना चाहिए जो हमारे आरंभिक अनुभव से लेकर वर्तमान समय तक परमेश्वर की आत्मा उपदेश तथा स्वीकृति द्वारा प्रमाणित किया गया है। आज्ञापालक लोगों के द्वारा जिस काम को परमेश्वर आगे चला रहा है उसको हमें बहुत ही बहुमूल्य समझना चाहिए, जो उसके अनुग्रह की शक्ति द्वारा समय की वृद्धि के साथ अधिक दृढ़ और कार्यक्षम होता जाएगा। शत्रु परमेश्वर के लोगों के विवेक को धुंधला और उनकी कार्यक्षमता को निर्बल करने की चेष्टा कर रहा है, परंतु यदि वे परमेश्वर की आत्मा के आदेशानुसार परिश्रम करेंगे तो वो उनके सामने शुभ अवसरों के दरवाजे खोल देगा, जिससे पुराने उजाड़ स्थानों के निर्माण का काम किया जा सके। उनका अनुभव निरंतर तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि प्रभु सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ अपने विश्वस्त सेवकों के ऊपर अंतिम विजय की छाप लगाने स्वर्ग से न उतरेगा। वो काम जो हमारे सन्मुख है उसमें मानव की पूर्ण शक्ति की आवश्यकता है। उसमें दृढ़ विश्वास और निरंतर सतर्कता की मांग की जाती है। कभी कभी कठिनाइयां जिनका सामना हमें करना पड़ेगा अत्यंत निराशाजनक होंगी, काम के भारीपन से हम चौंक उठेंगे, फिर भी परमेश्वर की सहायता से उसके दास अंत में विजयी होंगे। इसलिए मैं विनती करता हूं कि तुम हियाब न छोड़ो, इफिसियों 3:13। उन व्याकुल करने वाले अनुभवों के कारण जो आपके आगे हैं, अपने मन में न डरो। यीशु आपके साथ होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके आगे आगे चलेगा और मार्ग तैयार करेगा। वो हर कठिन घड़ी में आपका सहायक होगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ में कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। मैं उन दृश्यों के कारण जो हाल ही में रात्रि के दर्शन के समय मेरे सामने से गुजरे बहुत प्रभावित हुई। एक बड़ा आंदोलन दिखाई दिया, पुनर्जीवन का कार्य, जिसकी बहुत स्थानों में जागृति हुई। हमारे लोग पंक्तियों में बढ़ रहे थे और परमेश्वर की बुलाहटों का उत्तर दे रहे थे। मेरे भाइयों, परमेश्वर हमसे बोल रहा है, क्या हम उसका शब्द न सुनेंगे? क्या हम अपनी बत्तियों को सजाकर उन लोगों की तरह काम न करेंगे जो अपने स्वामी के आगमन की बाट जोहते हैं? ये वो समय है जो प्रकाश ले जाने और कार्य करने का। सो मैं तुमसे विनती करती हैं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहिता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सलाह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता को रखने का यत्न करो। इफिसियों 4:1-3। विश्वासियों का पारितोषिक। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करती हैं कि स्वर्ग के मेघों में मसीह के आगमन के लिए तैयारी कीजिए। अपने हृदयों से दिन प्रतिदिन संसार का प्रेम निकाल डालिए। अनुभव से मालूम कीजिए कि मसीह से संगत करने का क्या अर्थ है। न्याय के लिए तैयार हो जाइए कि जब मसीह आवे कि सब विश्वासियों में प्रतिष्ठा पावे, तो आप उनमें होवे जो उसको शांति के साथ मिल सकें। उस दिन उद्धार पाए हुए पिता और पुत्र की महिमा में चमकेंगे। स्वर्गीय दूत अपनी अपनी सुनहली वीणाओं को बजाकर सम्राट और उसके विजित स्मारकों का, अर्थात लोगों का जो मेमने का लोहू में शुद्ध और सफेद किए गए हैं, स्वागत करेंगे। विजय के गीतों से स्वर्ग गुंज उठेगा। मसीह की जीत हो गई। वो स्वर्गीय आंगन में उद्धार पाए हुओं के संग प्रवेश करता है, जो इस बात के साक्षी हैं कि उसका दुख भोगने तथा बलिदान का कार्य अकारथ नहीं गया। हमारे प्रभु का पुनरुत्थान और स्वर्गीय रोहण मृत्यु और कब्र के ऊपर परमेश्वर के संतों की विजय का एक पक्का प्रमाण और एक प्रतिज्ञा है कि स्वर्ग उनके लिए खोला गया है जो अपने चरित्र को वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर सफेद करते हैं। यीशु पिता के पास मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में गया है और परमेश्वर उनको जो उसके स्वरूप का प्रतिबिंब दिखलाएगा और उसमें भागीदार बनाएगा, पृथ्वी के यात्रियों के लिए घर बने होंगे, धार्मिकों के लिए पहनने को वस्त्र, सिर पर धरने को तेजस्वी मुकुट और हाथ में खजूर की डालियां होंगी। परमेश्वर के इंजाम में जिस जिस वस्तु ने हमको व्याकुल किया है, वे सब आने वाली दुनिया में स्पष्ट हो जाएंगे। जो बातें इस समय समझनी कठिन हैं, उस समय समझने योग्य होंगी। अनुग्रह के रहस्य हमारे सामने प्रकट होंगे। यहां हमारे सीमित दिमागों ने केवल गड़बड़ी और अपूर्ण प्रतिज्ञाओं का अनुभव किया था, वहां हम सिद्ध तथा सुंदर ऐक्य देखेंगे। तब हम जानेंगे कि असीम प्रेम ने उन कठिन अनुभवों को क्यों आने दिया था। जब हम उसकी कोमल रक्षा को महसूस करेंगे, जिसके हुक्म से सब बातें मिलके हमारी भलाई का कार्य करती है, तो हम अकथनीय हर्ष और पूर्ण महिमा से आनंदित होंगे। स्वर्ग के वायुमंडल में दुख दर्द रह नहीं सकते। उद्धार पाए हुओं के घरों में आंसुओं का नाम न होगा, न कोई अंतोष्टि क्रिया का जुलूस, न मातम के बिल्ले लगाए जाएंगे। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो इसमें रहेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। यशाया 33:24। जैसा जैसा अनंत काल गुजरता जाएगा, वैसा अनंत का प्रवाह बहता हुआ गहरा होता जाएगा।
थोड़ी देर के बाद हम उस पुरुष को देखेंगे जिस पर हमारी अनंत जीवन की आशाएं केंद्रित हैं। उसके समक्ष इस जीवन के सारे दुख और कठिनाइयां कुछ नहीं के बराबर होंगी। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। इब्रानियों 10 आयत 35 से 37। ऊपर की ओर देखिए और अपने विश्वास को लगातार बढ़ने दीजिए। ये विश्वास आपका उस सकरे मार्ग में मार्गदर्शन करेगा जो परमेश्वर के नगर के फाटकों में होकर महिमा के उस दूरस्थ विस्तृत असीम भविष्य में प्रवेश करता है जो पाए हुओं के लिए है। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। याकूब 5 आयत 7-8। और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तब मसीह अपने काम का नतीजा उसके प्रतिफल में देखेंगे। उस बड़ी भीड़ में जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, जो उसकी महिमा के सन्मुख आह्लाद सहित निर्दोष पेश किए जाएंगे, जिसके रक्त द्वारा हम मोल लिए गए और जिसके जीवन से हमें शिक्षा मिली है, वो अपने मन के खेत का फल देखकर शांति पाएगा। धैर्य और विश्वास पूर्ण विदाई का शब्द। मैं बहुत देर तक जीने की आशा नहीं करती हूं। मेरा काम प्रायः समाप्त हो चुका है। मैं नहीं सोचती कि अपने लोगों के लिए अधिक साक्षियां लिखें। हमारे ठोस दिमाग को लोग जानते हैं कि काम की उन्नति तथा निर्माण के लिए क्या भला है, परंतु हृदय में परमेश्वर का प्रेम रखते हुए उनको परमेश्वर की बातों में गहन अध्ययन की आवश्यकता है। विगत इतिहास का पुनरावलोकन करके और अपनी वर्तमान स्थिति के पग पग की उन्नति का निरीक्षण करके मैं कह सकती हूं, परमेश्वर की स्तुति हो जब मैं देखती हूं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। मैं आश्चर्य से और मसीह के नेतृत्व में विश्वास से भराएं हमारे विगत इतिहास में हमको दी हैं। समाप्त। एलन जी वाइट 130 से भी अधिक पुस्तकों की लेखिका है। इनमें से बहुत से कार्य उनके मरणोपरांत संग्रहित करके प्रकाशित किए गए, जो उनके लेखों के संग्रह से प्राप्त हुए। वे विश्व की एक ऐसी लेखिका हैं जिनके कार्यों का विश्व का 150 भाषाओं में अनुवाद करा गया है। ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा उन्होंने येशु को निरंतर उच्च स्तर पर रखा तथा पवित्र शास्त्र को ही अपने धर्म का आधार बताया। कलीसिया के लिए परामर्श। एलन जी वाइट के प्रेरणात्मक लेखों में से चुनकर उनकी किताबों तथा रसाली की पुस्तक है। 66 अध्यायों से बना यह संग्रह है। इसमें दिए परामर्श बहुत बड़े विषयों पर ध्यान देते हैं। पृष्ठों की गिनती को कम रखने विवशता के कारण संग्रहकर्ताओं ने बहुत ही विशेष तथा महत्वपूर्ण लेखों को विषय को ध्यान में रखकर कलीसिया तथा सदस्य को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। ये सभी अध्याय पाठक को प्रभु के समीप लाएंगे, साथ ही उन्हें प्रतिदिन के जीवन को प्रभु के प्रेम और महिमा में व्यतीत करने की राह भी दिखेगी।